ओम शांति। हम सभी के बीच बाप दादा की अति लाडली स्नेही आदरणीय निर्मला दीदी जी पधार चुके हैं। हम सभी भाई बहने एक हाथ की ताली द्वारा दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी जी भोपाल जोन में रीवा सेंटर पर अपनी सेवाएं देते हैं और आज हम सभी कैसे अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर आए, तो इसी में आगे कैसे बढ़े, कैसे उन्नति करें, कैसे बाप दादा के समान बने, तो इन्हीं बातों पर दीदी जी हम सभी को सुनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी को नया जीवन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इसको अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि आज की दुनिया में अगर हमें बाबा न मिला होता तो हमारे जीवन कैसा होता। जैसा कि दुनिया को देख रहे हैं तो ये पल, ये अनुभव हमारे हर कदम में होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में हम कितने भी व्यस्त रहते हैं और व्यस्त होते दुनिया में अगर किसी की कोई बहुत अच्छी, बहुत कीमती संपत्ति होती है, वो कितना भी व्यस्त हो, कितना भी कहां पर भी हो, लेकिन उसके दिमाग में वो बात सदा रहती है कि ये अमूल्य वस्तु मेरी फलानी जगह रखी है। तो इस दुनिया में कितना भी कारोबार है, कितना भी लौकिक जवाबदारियां हैं, कितना भी हम व्यस्त हैं, लेकिन हमें अपनी ये जीवन कभी नहीं भूलना चाहिए। आप सभी का अनुभव है, जब पहले दिन आते हैं, कोर्स करते हैं और जैसे जैसे हमें ज्ञान के नए नए राज मिलते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। उस खुशी के आधार से उस समय हमें न कोई लौकिक कारोबार की बाधाएं बांध पाती हैं, न कोई मित्र संबंधियों का कोई बंधन हमें बांध पाता है। क्यों? हमें जो मिल रहा है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्हें तो पता नहीं है ये क्या सुनने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं। देखिए, हर ब्राह्मण आत्मा ये समझती है कि मुझे जो मिला है और जो मुझे मिल रहा है वो मैं कितना अपने अंदर भर लूं। लेकिन चलते चलते जबकि हमारा जैसे 7 दिन का कोर्स होता है, 7 दिन के कोर्स में हमें नई नई पॉइंट, नई नई बातें बताई जाती हैं, तो खुशी होती जाती है। और कोर्स के बाद जब मुरली सुनते हैं और मुरली को हमने सुनते समय कानों से सुनते हैं लेकिन कहीं हमारी आत्मा बिजी है, तो वो जो मुरली की पॉइंट नई थी, जो हमें आगे बढ़ाने वाली थी, वो हमारे दिमाग से मिस हुई सुनते हुए। तो हम जो हमारा कल का जीवन था वैसा आज का जीवन भी होता है, जबकि नई कोर्स की बातें हमें नई खुशी देती है, तो मुरली भी हमें रोज नई खुशी देती है हमें। तो मिस होने से धीरे 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 बाबा हमेशा मुरली में कहता है, बच्चे माया आपके साथ, आपका सामना करने के लिए जब से बाबा के बनते हैं उसकी भी निगाह हमारे ऊपर होती है और वो भी अपना कार्य बराबर करती है। तो देखने में आता है कि कुछ समय के बाद जीवन हमारा सामान्य होता है, मुरली सुन रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, लेकिन जैसे हमें जो खुशी पहले दिन थी धीरे धीरे क्या वो खुशी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? क्या कहेंगे? बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लास आगे हमारी बढ़ रही है तो खुशी होनी बढ़नी चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो खुशी हमारी जैसी पहली थी वो भी बरकरार रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो खुशी माया के किसी विघ्न के कारण, माया का सामना करने के कारण वो खुशी हमारी हमसे जैसे कि कहीं दूर है। क्योंकि जो हमारे अंदर के स्वभाव संस्कार हैं, जो हमने पहले दिन आत्मा के मन बुद्धि और संस्कार, जो तीनों शक्तियां हैं, उन शक्तियों का विकास करना है मुरली के आधार से, अर्थात इस क्लास के आधार से। भौतिक विकास तो दुनिया का हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा का विकास है कि हमारी बुद्धि के अंदर कौन कौन से विचार नए आ रहे हैं, हमारा मनन चिंतन कौन सा हो रहा है और हमारे संस्कारों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। एक बात याद आती है कि एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था, उसे चार व्यक्ति मिले थे। पहले व्यक्ति से उसने पूछा, आपका नाम क्या है? तो चार व्यक्ति में सबसे जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा के रूप में तो हम सब भाई हैं, लेकिन वो स्त्री के रूप में, बहनों के रूप में चार स्त्रियां जिसको कहते हैं वो मिली थी। तो उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, बुद्धि है। कि कहां रहती हो? कहा, दिमाग में रहती है। दूसरी बहन थी, उससे पूछा तो कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लज्जा है। कहां रहती हो? आंखों में। तीसरी बहन से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? का हिम्मत है। कहां रहती हो? दिल में रहती हूं। चौथी बहन से पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, तंदुरुस्ती। कहां रहती हो? मनुष्य के पेट में रहती हूं। व्यक्ति आगे बढ़ गया, आगे चल के वही आत्माएं भाई के रूप में, पुरुष के रूप में उसे चार भाई मिले। पहले से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, क्रोध। कहां रहते हो? मनुष्य के दिमाग में। कहा कि मनुष्य के दिमाग में तो बुद्धि रहती है। बोले कि जब मैं आता हूं तो बुद्धि किनारा कर लेती हूं। दूसरे भाई से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा लोभ। कहाँ रहते हो? मनुष्य की आंखों में। कहा आंखों में तो लज्जा रहती है। कहा जब मैं आता हूं तो वो किनारा कर लेते। तीसरे भाई से पूछा, कहा कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहा भय। कहां रहते हो? कहा मनुष्य के दिल में। बोले दिल में तो हिम्मत रहती है, आप कैसे रहते? बोले कि जब मैं आता हूं तो हिम्मत 9, 2, 11 हो जाती वहां से। चौथे से पूछा, कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा रोग। कहां रहते हो? मनुष्य के पेट में। बोले पेट में तो तंदुरुस्ती रहती है। बोले जब मैं आता हूं तो तंदुरुस्ती किनारा कर लेती है। क्या सचमुच हमें ये समझ मिली है कि क्रोध के आने से मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता है। और जबकि ब्राह्मण जीवन के लिए ये वर्जित हैं, हमारे पहले कोर्स में बताया जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों योगी के लिए वर्जित हैं। तो जब क्रोध आता है तो देखो क्या उस समय बुद्धि काम करती है कि बुद्धि काम करना छोड़ देती है या किनारा कर लेती है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है हम क्रोध किस लिए कर रहे हैं। क्रोध के लिए बाबा ने मने किया है ना। क्रोध क्यों आता है? क्रोध कहीं ना कहीं हम आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाते हैं, जो पहला पाठ है हमारा। तो निश्चित है कि 7 डेज कोर्स के बिना हम किसी को क्लास में एंट्री नहीं करते हैं। मुरली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमें ये जानकारी हो चुकी है कि ब्राह्मण आत्मा को, मुझ आत्मा को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हमारा कोर्स कोई दुनियावी किताबों के रूप में, जो अनेक कॉलेज और स्कूल और विद्यालय में पढ़ते हैं, उस हिसाब से तो हमारी पढ़ाई नहीं है। हमारी पढ़ाई है कि जो आत्मा निर्विकारी थी, जो आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, जो आत्मा गुणों से भरपूर थी, जो आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न थी, वो आत्मा इन विकारों के कारण खाली हो गई, कमजोर हो गई, पतित हो गई, पुजारी हो गई, दुखी हो गई, अर्थात कंगाल हो गई। अब शिवावा आया है हमें निर्विकारी बनाने, 16 कलाओं से संपन्न करने, दैवी गुणों से भरपूर करने। हमारी पढ़ाई शुरुआत की यहीं से शुरू होती है। तो फिर हमारे अंदर में क्रोध कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से पैदा हुआ? कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं बच्चे हमारी ये पढ़ाई रेगुलर और पंचुअलिटी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। विषय हमारा है आगे हम कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना कोई पैरों से दौड़कर नहीं, कोई किसी हिसाब से किसी को पीछे करने से नहीं, किसी की निंदा करने से नहीं, किसी के ऊपर चढ़ाई करने से नहीं, आगे बढ़ना है इन बुराइयों को जीतने से। तो बाबा की हर दिन की मुरली हम उस पर चिंतन करें, मनन करें, तो एक एक मुरली आप गौर करेंगे कि सुबह हम मुरली सुनते हैं और सारे दिन मुरली के आधार से हमारे सामने पेपर आते हैं और वो पेपर अगर हमारी मुरली हमारे ध्यान में है तो उस पेपर में हम अवश्य पास हो जाते हैं। ये निश्चित है, ये गारंटी है। लेकिन मुरली सुनने के बाद जब हम मुरली को डायरी में नोट कर देते हैं और हमने समझा कि हमने मुरली पढ़ी है, सुनी है, लिखी है, लेकिन लिखना तो हमें अपने दिमाग में है कि आज बाबा ने कहा बच्चे गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा करने के ही आपके सामने सारे दिन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि न चाहते हुए भी आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कहेंगे तो गुस्सा नहीं करना था, लेकिन बात ही ऐसी थी। अब बात ही ऐसी थी तभी तो कहा कि आज गुस्सा नहीं करना। तो निश्चित है कि ये बात हमारे दिमाग में रहे कि आज बाबा ने कहा बच्चे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना बहुत पाप है, और आज ही ऐसी बात आई और मैंने गुस्सा कर ली, तो हम सोच सकते हैं कि डायरेक्ट हमने परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और परमात्मा की शिव बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होना निश्चित है कि हमें बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। और धोखा को अगर आप समझें तो जिस दिन आपने क्रोध किया और मुरली में हमने सुना था, पढ़ा था गुस्सा नहीं करना है, उस दिन आप योग लगाइए, योग लगाने बैठिए, योग नहीं लगेगा। ये पहली पहचान है कि मेरे से विकर्म हुआ है, शिव बाबा की आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि योग हम लगाते किससे हैं? शिव बाबा के साथ। और आज योग नहीं लग रहा है, माना बाबा हमारे सामने नहीं आ रहा है, तो निश्चित है बाबा को फिर मनाना और कितनी ज्यादा मेहनत हमें करनी होगी। पहले तो मनाने से तो बाबा आया है, भक्ति में कितनी मेहनत की हमने बाबा को बुलाने के लिए, भले बाबा नहीं जानते थे, भगवान कहते थे, लेकिन बुलाया तो उसी को था। अब बाबा हमारे सामने है और सामने होते हुए हमारा मिलन नहीं हो रहा है, तो उस समय हमारे अंदर में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और इतना भी अगर हम कर लें उस समय कि व्यर्थ संकल्प न चला के उस समय हम मुरली को ही पढ़ें, रिवाइज करें, और फिर हमारे ध्यान में आता हाँ आज तो ऐसा नहीं करना था, फिर बाबा को मनाएं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने कहा ऐसा नहीं करना है और हमने किया। तो जब बाबा को हम मनाएंगे तो हम सब जानते हैं बाबा को क्या कहते हैं दुनिया के अंदर में, और हम बच्चे भी कहते हैं बाबा का नाम है भोलानाथ। इतना भोला है कि हमारी गलती स्वीकार करने पर वो हमें क्षमा कर देता है और फिर से कहता है बच्चे अब गलती नहीं करना, और फिर हमारा वैसे के वैसे देखते हैं योग लगने लगता है। ऐसा हम सब अनुभवी है इन चीजों के, कि बाबा से अगर हमने पहले रियलाइज किया जहां मेरी गलती है, फिर हमने बाबा को सामने रख के बाबा से माफी मांगी, क्षमा मांगी, बाबा अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, फिर वो गलती आपसे होने में बड़ा दिक्कत होगी, आएगी नहीं फिर के। हाँ ये तो फौरन रियलाइज कर लेती है आत्मा, अब मेरा जाना व्यर्थ हो जाएगा, मैं इसके पास नहीं जाऊं। तो आपने इतने बड़े शत्रु को जीत लिया और आप आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से मुरली के हिसाब से गहराई से आप मुरली का चिंतन करना कि आज बाबा ने कहा है बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करना, और उस दिन बातें जरूर आएंगी आपके सामने, और वो बातें इतनी अच्छी होती हैं, मीठी होती हैं, कान भी उसके लिए दूर बैठे होंगे, कोई बात कर रहा होगा तो कान लगे होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, अगर बहुत दूर हैं तो कहेंगे लगता है मेरी बुराई हो रही होगी, तो मन में ही परचिंतन शुरू हो जाता है, उस आत्मा के बारे में हम सोचते हैं, जबकि बाबा ने कहा बच्चे परचिंतन नहीं करना, स्वचिंतन करना। देखिए संस्कार तो पहले का है, ज्ञान तो अभी मिला है, समझ तो अभी मिली है, तो संस्कार न चाहते हुए वो काम करते हैं, तो इसके लिए हमें बड़ा ही कदम कदम सावधानी रखनी पड़ती है कि आज की मुरली आप समझ सकते हैं रोज बाबा मुरली का विधान क्यों रखा है। ज्ञान तो हमें 7 दिन मिल गया है, और उसी ज्ञान को बाबा मुरली में हमारे सामने रिवाइज करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि कल की बात भूल सकती है, लेकिन सुबह सुबह का जो समय होता है, सारे दिन कहते हैं सुबह की बात सारे दिन ध्यान रखते हैं, तो सुबह सुबह मुरली का जो बाबा ने हमें नियम दिया है वो हमारी सेफ्टी का साधन, आगे बढ़ाने का साधन, क्योंकि हर दिन नई बातें आएंगी और हर दिन बाबा हमें नई नई बातें बताते हैं। तो अगर मैंने परचिंतन से विदाई ली कि बाबा ने कहा नहीं भाई आज मुझे नहीं सुनना कोई भी, कान तो कहेंगे नहीं 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 सुने बैठे हो, अकेले बैठे हो, क्या बात है, करने में क्या हर्जा है, जो सही बात है सुनने में क्या हर्जा है, सुनेंगे भी चिंतन भी करेंगे और सुनकर फिर अंदर संभालें, ये भी बहुत कठिन बात होती है जब तक हम किसी को न सुना लें। इसकी बात तो आप सबने कहानियों में सुनी है कि रिपीट कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ बातें हमारे ध्यान में नहीं होती हैं, सुनने में भी नहीं होती हैं, और वो कहानी के रूप में बहुत याद रहती हैं। एक राजा थे तो उनके बड़े बड़े कान थे, तो राजा हरेक किसी से अपने बाल नहीं बनवाते थे, क्योंकि जिससे बनवाते थे उसको फिर उसका अंतिम ही दिन होता था, क्योंकि वो किसी को बता देगा तो राजा की बेइज्जती होगी। तो बहुत सारे जो नाई थे उस राज से विदा होते गए, अब जिसका नंबर आता था उसे बड़ा वो होता था कि राजा के बाल बनाना माना जिंदगी से हाथ धोना। एक नाई की बारी आई थी तो उसने कहा मेरी बारी है, तो दिन प्रतिदिन चिंता के मारे वो सूखता गया, खाना पीना छूट गया कि अब मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब राजा के बाल बनाने की मेरी बारी है। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं खाना अच्छा बना के देती हूँ, सब कुछ है, और ये हो क्या रहा है। तो कहा कि मुझे एक चिंता है। तो कहा कि राजा की इस प्रकार से शर्त होती है। तो कहा कि शर्त राजा की क्या है। शर्त यह है कि राजा जिसको बाल बनवाते हैं उसको समाप्त कर देता है। तो आप राजा से पूछिए ना क्या शर्त राजा की, क्यों ऐसा है। राजा के पास जैसे ही समय आया, राजा से उसने कहा, राजा महाराजा आप जैसे कहेंगे आप मुझे बताइए इसका कारण। तो राजा ने बताया कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, अगर बताते हैं तो निश्चित है कि वो खैर नहीं। तो राजा ने कहा मैं नहीं बता, वो नाई ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरा जीवन दान दिया जाए। राजा ने उसका जीवन दान देके उसको छोड़ दिया। अभी बात हो गई। अब जो नाई था उसके मन में जो बात थी वो पच नहीं रही थी। अब वो पहले से ज्यादा और रोगी हो गया, दुखी हो गया और बीमार हो गया कि क्या करूं मैं। फिर उसने कहा, बहन ने, उसकी पत्नी ने, क्या कारण है। कहा कि मेरे पेट में जो बात है, राजा ने कहा किसी को बताना नहीं, और मेरे पेट में वो बात है वो पच नहीं रही है। उसकी बहन ने कहा, पत्नी ने कहा कि अगर ऐसा है तो पेड़ से जाके बोल के आ जाओ, तुम अपनी बात अपने पेट से निकाल के आ जाओ। ठीक है, उसने वो गया और पेड़ को बता के आ गया। तो पेड़ को बताया कि राजा के बकरे जैसे कान हैं। खुदा ना खास्ता समय बीता, पेड़ कटा, पेड़ में से कुछ साज बने, सारंगी बनी, ढोलक बनी और तबला बना। और क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो मिटती नहीं है, कहते हैं जो मुंह से आवाज निकलती है वो आकाश में चली जाती, आकाशवाणी कहते हैं, वो समाप्त नहीं होती है। तो अब वो तीनों साज जो बने तो उसमें से आवाज निकल रही थी, ढोलक से आवाज निकली, राजा बकर कना, राजा बकर कना। सारंगी कहती है तुमसे किन्ने कही, तुमसे किन्ने कही, माना किसने कहा। और आगे का जो साज कहता है तबला, हमको नाई ने कहा, हमको नाई ने कहा। अब धीरे धीरे ये आवाज फैलती गई और राजा के पास पहुंच गई। पर चिंतन, सुनना गुना होता है, करना गुना होता है। उसका कारण कहानी के माध्यम से हमने समझा कि जीवन खतरे में होता है। वो बात पचती नहीं, वो बात निकल जाती है और एक से निकल के अनेकों के पहुंच जाती है, और जहां नहीं पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल देखने में भी आता है कि हम कहते हैं हम आपको बता रहे हैं, आप बताना नहीं, और जिसकी बात है जब उसको पहुंचती है और जिसने कहा नहीं बताना वो व्यक्ति ना उसका अच्छा रहता है ना जिसकी बात करते हैं उसका अच्छा रहता है। माना हम तो देवता बनने आए हैं, परम पूज्य बनने, सभी की सभी आत्माएं हमारी पूजा करेंगी और कुछ आत्माएं हमसे नफरत करेंगी तो क्या हमारी वो मूर्ति बनेगी? हम देवता बनेंगे, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना, और देवता ही पढ़ाई बाबा हमें दिन प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं और हम बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ते हुए जो बातें मने की गई हैं और वो बातें हमारे जीवन में आ गई हैं तो हम विचार करें इस विषय पर कि हम आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। और फिर यहां आने के बाद दुनिया से निकल के हम यहां आए हैं, जो पढ़ाई यहां पर है वो दुनिया में नहीं है, कहां पर भी नहीं है। भले हमें संतों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, अनेक और महापुरुषों के द्वारा सुनने को मिला है, ऐसा नहीं है कि भागवत हमने सुनी तो उसमें नहीं बताया गया है, रामायण सुनी उसमें नहीं कहा गया है, सब में बताया गया है। लेकिन धारण करने की शक्ति वो थी, वो नहीं थी, वो हमें योग से मिलती है, बाबा से मिलती है। और बाबा की ही कही हुई बात को हमने सुनी अनसुनी कर दी, टाल दिया, भूल गए, मिस किया, तो क्या कोई और मिलेगा हमें? कई बार ऐसा होता है योग नहीं लग रहा है, चलो सेवा में लग जाएंगे। सेवा बहुत दिल से करते हैं, योग जबकि हमें मालूम है कि हमारे चार विषय हैं, चार विषय का आधार योग है। ज्ञान भी पक्का तब होता है जब योग में हमारा मन लगता है, धारणा भी तभी होती है जब हम अमृत वेले उठकर बाबा से शक्ति लेते हैं, सेवा भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारा हमारे अंदर में योग की वो पावर काम करती है। लेकिन सेवा कई बार हम समझते हैं कि प्रदर्शनी समझाना और म्यूजियम समझाना या किसी को पर्चा बांटना या ज्ञान देना ये सेवा है। वास्तव में जिसको भी हम ज्ञान देते हैं भगवान आ चुका है, पर्चे में भी लिखा होता है, और हम जिसको पर्चे दे रहे हैं वो हमसे ही पूछ ले, पहले तो हमारा ऊपर से नीचे हमको देखते हैं कि भगवान आ गए हैं, आपको मिले हैं भगवान, तो हमारी जीवन भगवान मिला है वैसी जीवन हमारी दिखनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे शुद्ध भोजन करना है। भोजन शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध का तो हम सबको मालूम है ही है, लेकिन सबसे बड़ी शुद्धि है जो बाबा की याद में रह के भोजन बनाया हुआ हो, बाबा की याद में रह के भोजन करना हो, वो है शुद्ध भोजन। अभी परिवार में रहते हैं, घर में बहू आ गई है, भोजन घर में सास कहती अब तो बहू है तो बहू बनाएगी, और हमें परहेज मिला है कि हमें भोजन शुद्ध हाथों का ही करना है, तो यहां बात आती है। अगर हम ये कहते हैं कि हमें बहू के हाथ का नहीं खाना तो घर में कलह होती है, विघ्न होता है, अनेक बातें आती हैं कि हम क्या करें ऐसे में। सच बात तो यही है कि वो आत्मा हमारे घर में आई है, उसका भी हिसाब है, तभी आई है। तो हम बहुत सारे कारोबार हैं उसको दे सकते हैं, लेकिन भोजन की बात है, भोजन हम खुद भी बनाएं और परिवार को खिलाएं और वो भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे, एक गारंटी सहित है। क्योंकि बाबा की याद का भोजन बना हुआ खाने से बहुत ताकत मिलती है। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन की जो नियम और धारणा है, अगर नियम और धारणा का हमने पूरा ध्यान रखा तो आगे बढ़ने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे माया हो, चाहे माया का कोई विघ्न हो, चाहे कोई और बात हो, हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारे सामने कठिन परिस्थिति आती है कि बहन जी, अगर हम आज घर में बहू के हाथ का खाना नहीं खाते हैं तो हमारा बेटा भी नाराज होता है, बहू भी नाराज होती है, उनके रिश्तेदार भी नाराज होते हैं, ऐसे में हम क्या करें? आपको इस बात को पूछने की जरूरत नहीं है किसी से भी, आप केवल अपने मन से पूछिए कि ये आज्ञा किसकी है। शुद्ध भोजन चार नियम है, चार सब्जेक्ट है हम सबके, चार नियमों में सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन नियम के रूप में है। वो जो योगी जीवन के ये चार पिलर हैं, और शुद्ध भोजन में शुद्ध हाथों का बना हुआ, बाबा की याद का बना हुआ, बाबा की याद में खाया हुआ, और इसमें अगर कोई नाराज होता है तो निश्चित आप किसका ध्यान रख रहे हैं? पहली बात, ये नियम किसका दिया हुआ है? अगर उसके नियम को तोड़ेंगे तो वो नाराज होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा, निश्चित होगा। तो बाबा को नाराज करना ये उचित है? ये आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। अभी आप कहते हैं कि बहन जी, हम तो परिवार में रहते हैं और बाबा ने परिवार में रहने के लिए सबको आज्ञा दी है, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल के समान बनो, तो निश्चित है कि हमें यहाँ पर अपना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, बाबा से शक्ति लेकर उस शक्ति की, उस हिम्मत को हमें दिखाना होगा कि हमें परिवार में बच्चों के साथ इतना प्यार से रहना है, इतना हिलमिल के रहना है कि हमारे बच्चे हमारी बात का विरोध नहीं करेंगे, गारंटी है। विरोध तब होता है जब हम अपने संस्कारों में पिता के रूप में रहते हैं, या ससुर के रूप में रहते हैं, या माँ के रूप में, या सासू के रूप में रहते हैं, तो फिर वो भी देखते हैं कि इनमें आश्रम जाने से कितना परिवर्तन आया है, इनकी बात का हमें आदर करना चाहिए, वो सहज स्वीकार करते हैं और कर रहे हैं, तब तो ब्राह्मण जीवन आज 83 वर्षों से आप जानते हैं कि 99% बच्चे परिवार में रहते हैं, 1% सेवा केंद्र पर रहते हैं। तो परिवार में रहना माना अपने नियमों को ढीला नहीं करना, अपने नियमों को किसी प्रकार से कमजोर नहीं करना, नियमों को तोड़ना नहीं है। ये हम पक्का अपने दिमाग में रखें। जिन भाई बहनों को खाना होता है वो जरूर महसूस करते होंगे बड़ी कठिन बात है ये, लेकिन शुभ भावना है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ना है तो ये जो बैरियर है हमारे सामने आते हैं उन्हें हमें हटाना होगा, रास्ता साफ करना होगा। कई बार ये बात आती है कि बहन जी अभी तो ठीक है हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, और जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, वो लोग भी कह देते हैं कि जब नहीं होगा तब तो करना पड़ेगा, तो पहले से ही तो वो हमारी मजबूरी होगी। और ऐसा हमारा मानना है, मानना नहीं, हमारे भाई बहनों का अनुभव है जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, जो आज्ञाकारी होकर परिवार में रह के चल रहे हैं, उनके सामने ऐसी बातें नहीं आई, और आई थी तो उन्होंने अपने समय में उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया, और बाद में बाबा की मदद मिली तो ऐसे बाबा के बच्चे बहु बेटे भी उनके ज्ञान में आ गए थे। इतनी सुविधाएं उन्हें मिली हुई हैं। ऐसा नहीं है, हाँ ये आवश्यक है कि हमारे कमजोरी तो पिछली है, और कमजोरी के साथ में एक और हमारे भाई बहनों के साथ में होता है कि बहन जी लोग तो कहती हैं, वो तो उनके लिए वो तो सेवा केंद्र पर रहती हैं, तो हम ये राय परिवार वालों से लेते हैं जो साथी होते हैं। अब आप किसी कमजोर आत्मा से, कोई घर में ऐसे चल रहा है उससे अगर आप राय लेंगे तो वो राय क्या देंगे, अपने जैसी ही देंगे वो भी राय। तो राय भी हमको लेनी है तो किनसे लेनी है। बहुत कोई मजबूरी हालत किसी की होगी तो वो बाबा हमेशा कहते हैं जो मिलिट्री वाले होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो मैस में ही खाते हैं, वो बाहर नहीं बना सकते, उनके लिए कुछ कड़े नियम होते हैं, उनके लिए बाबा ने जरूर छुट्टी दी भी है कि बच्चे ऐसी कंडीशन में लाचारी हालत में आत्मा स्वीकार नहीं करती। लेकिन आत्मा का योग इतना जबरदस्त होता है कि बाबा की किरणें उस भोजन में पड़ रही हैं, और बाबा ने कहा भी है ऐसी कंडीशन पे तो बाबा की मदद से वो भोजन शुद्ध होता है और वो आत्मा उसको स्वीकार करती है, इसलिए वो हमेशा इस युद्ध में, वो युद्ध और इस युद्ध में दोनों में विजयी बनती है। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बेहद बाबा के, जिसको हम दुनिया वाले तो यही कहते हैं कि कहाँ गए थे हम, स्वर्ग आश्रम गए थे। कई कहते हैं स्वर्गवासी, बोले स्वर्गवासी कहेंगे तो बिगड़ेंगे, स्वर्ग प्रवास करके आए हम, जो भी शिविर में आते हैं यही अनुभव सुनाते हैं। तो हम तपोभूमि में आए हैं, पवित्र भूमि में आए हैं, बाबा से मिलन करने आए हैं, बेहद परिवार में आए हैं। तो हमें कहाँ भी अगर हमारी कोई ऐसी कमी हो उसको हम दूर अवश्य करें। और ये भी हो सकता है कि हम अभी तक खाते आ रहे थे, मालूम नहीं था, मधुबन में तो एक साल के बाद आना होता है, तब हमें ये बातें मिली हैं, पहले तो हमारी टीचर ने भी ऐसा नहीं कहा और हमें मालूम भी नहीं था। लेकिन आप सबको मालूम है कि जब कोई तीर्थ यात्रा करने जाता है तो तीर्थ यात्रा पर कुछ न कुछ छोड़कर आते हैं। क्या छोड़ के आते हैं? कमी छोड़कर आते हैं, बुराइयां छोड़कर आते हैं, तभी वो तीर्थ यात्रा सफल मानी जाती है। तीर्थ यात्रा जाते ही इसलिए हैं, खाली स्नान करने नहीं जाते, कुछ पुण्य करने जाते हैं, अच्छा बनने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, वहां से कुछ बातें लेकर आते हैं, तो हम बाबा मिलन में आए हैं, हमारा लास्ट टर्न भी है और हम इस नियम को, क्योंकि इससे हमारे इतने फायदे होंगे, आप कुछ दिन करके भी देखेंगे तो, क्योंकि जो योग नहीं लगता उसकी जो समस्या है, जो दिखती नहीं है, जिसका योग नहीं लग रहा उसे ऊपर से कुछ पता नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर में जो खुशी और नशा होना चाहिए वो अनुभव नहीं होता। क्योंकि बहन जी बैठते हैं तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, यही शिकायत ज्यादातर ब्राह्मणों की होती है, व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं। हम भी उनसे पूछते हैं, कोई न कोई कारण तो होगा, जब बाबा हमारे सामने है तो व्यर्थ आ कैसे सकता है हमारे सामने। सर्वशक्तिवान, गीता में दिखाया केवल एक बार ही साक्षात्कार अर्जुन को हुआ और वो तेजोमय देखा उसने, वो पावरफुल कि वो जिसको दिव्य नेत्र था वो खुल गया था। तो योग माना बाबा के सामने उपस्थिति, बाबा से करंट मिलती है, शक्ति मिलती है, और उस बीच में हमारे व्यर्थ संकल्प कहां से आए, कमजोर संकल्प कहां से आए, सुस्ती क्यों आई। कई कहते हैं बहन जी योग में बैठते नींद आती है, नींद कब आती है, जहां कमाई नहीं होती है। हम तो कमाई करने बैठे हैं, बाबा के सामने बैठना माना बाबा से भरपूर होना, बराबर वो शक्तियां आत्मा में प्रवाहित होती जा रही हैं, आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है, तो व्यर्थ रहता नहीं है। व्यर्थ है कहां न कहां हमारी कोई ऐसी कमी है, उसको हम मुरली के आधार से, और मुरली भी कई बार हमें नहीं समझ में आती है और बात कुछ हमारे सामने और होती है, तो निमित्त बहने होती हैं, तो बाबा ने सेवा केंद्र इसीलिए बनाए हैं, ये हैं तीर्थों के घाट बने हुए हैं, रोज घाट पर हम जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, मुरली सुनने जाते हैं। बहन जी से पूछो कि बहन जी ऐसी हालत में मुझे क्या करना है, और अगर हमें जो सहयोग मिलता है, जो हमें निमित्त के द्वारा मिलता है, हम जरूर उसको जीवन में फॉलो करेंगे, हमें बाबा की मदद अवश्य मिलेगी। और बाबा की मदद मिलेगी तो हर एक आत्मा अनुभवी है कि जब मन दुख होता है तो भी अनुभव होता है कि आज बहुत दुखी है हम, और जब खुशी होती है ये भी अनुभव आत्मा को होता है, आज बहुत खुशी है मुझे, आज मैं बेहद खुश हूं। तो खुशी और गम अनुभव की चीज है, इसलिए हम सभी को अभी ब्राह्मण जीवन में इन चीजों का अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन में गम, उदासी, चिंता, फिक्र, ब्राह्मण जीवन होते ही किनारा कर लेते हैं, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम सभी दूसरों के गम दूर करने के लिए दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं कि कोई परिवार में दुखी है भाई उसको जरूर जाके ज्ञान सुनाओ, वो भी हमारे जैसा सुखी हो जाए और उसके सारे गम दूर हो जाएं, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है, काय की सेवा करनी है, कोई मान शान की सेवा थोड़ी करनी है हमें, कि हम सेवाधारी बन गए हैं सभी हमको कहें सेवा। सेवा है दूसरों के दुख दूर करना, दूसरों के दुख दूर करना माना हमारे दुख दूर हो चुके हैं। किसी परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा, बाबा कहते हैं आत्मा ने शरीर बदली किया है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, तुम्हें रोना नहीं है। रोना आता है, माना निश्चित है कि हमारी कहीं न कहीं मोह की रग है, वो अभी टूटी नहीं है, अर्थात हमने संपूर्ण मोह पर विजय प्राप्त नहीं की है। तो ब्राह्मण जीवन माना खुशियों से भरपूर, आनंद से भरपूर। बाबा कहता है बच्चे खाओ पियो मौज करो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं कहता है। और मौज की जीवन है जहां कोई फिक्र नहीं, जहां कोई गम नहीं, जहां कोई चिंता नहीं, जहां कोई फिक्र नहीं। एक बात और है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए किन्हीं कारणों से, जितने कारण बताए उन कारणों में कहीं और कोई एक महीने से ज्ञान में चलने वाली आत्मा वो आगे बढ़ गई, क्योंकि उसने इन सब बातों को अपने जीवन में आत्मसात किया, बराबर उसने बारीकी से ध्यान रखा और बराबर वो चलती रही। जब वो आगे बढ़ती है तो भी हमारी खुशी कम हो जाती है, गायब हो जाती है। नहीं होनी चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए ना। कोई भी हमसे आगे जा रहा है उसको देखकर खुशी होनी चाहिए ना। लेकिन वहां भी जो छिपी हुई, जिनको गिनती नहीं करते पांच में, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये छोटी छोटी छिपी छिपी बातें हैं। जब बड़ों को नहीं हमने जीता तो वो छोटी कैसे, वो तो उनका नंबर तो आया ही नहीं था। फिर वो घर कर लेती हैं, फिर ब्राह्मण जीवन जो सब देखना चाहते हैं, फिर वहां पर हमारी कहीं न कहीं, आप सब समझते हैं और समझदार बच्चे हैं बहुत ही, आपने बाबा की नई चीज नहीं मिली है, वही है जो बाबा ने पढ़ाया है, लेकिन अपने जीवन में हमें आत्मसात करना ही है। ये विशेष पाठ मिला है आज से, अगर हमने ये पढ़ लिया निश्चित गारंटी सहित, कोई भी दिक्कत परिवार में नहीं आएगी, आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी शुभ भावना है आप सभी के प्रति, मेरे मीठे प्यारे भाइयों, प्यारी मीठी मीठी माताओं, आप सभी आगे बढ़ते चलें, बाबा का नाम रोशन करते चलें। यही हम दादियों की, हम बहनों की शुभ आशीर्वाद है आप सभी के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।